الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سورہ نساء کی تفسیر ہم اس عالم سالک تفسیر کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو اس میں چھٹی ہی آیت پر ابھی ہم پہنچے ہیں اور کافی ساری تفصیلات ہیں اس کی آیت کے اندر. شروع اس کا تمام انسانوں کو اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر مسائل وغیرہ بیان کیے بھی آتے ہیں آگے جا کر کے، لیکن لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ معاملات کو اچھا رکھنا اور ان کو ان کے مہر ادا کر دینا وقت پر، یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں. تو اب جو ہم آیات پڑھ رہے تھے ان کی تفسیر یہ تھی کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور عورتیں ہوتی ہیں، تو اگر ان کے مال کا تمہیں کفیل بنایا گیا ہے تو ان کو ایسے ہی مال حوال نہ کر دو، بلکہ ان کی سوچ سمجھ کو، ان کی میچیورٹی کو پہلے ٹیسٹ کر لو اور اس کے بعد پھر ان کے حوالے کرنا. تو اس میں پچھلے ہفتے ایک بات سوال ہی ہوا تھا کہ کیا عورتوں کو بالکل مال نہیں دینا چاہیے، ان کا مال جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا مال لے کر کے اپنے پاس رکھ دینا چاہیے. ان کا مال ان کی ملکیت ہے، وہ آپ اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے. اگر آپ اپنے قبضے میں لیں گے تو بے شک وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو اور آپ کی بیٹی کیوں نہ ہو، آپ جو ہے وہ اس کے یعنی قابض کہلائیں گے. ان کے مال کو اپنے قبضے میں لے کر کے رکھ لینا، ٹھیک ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وہ چھوٹے تھے اور آپ کو ان کا کفیل بنایا گیا تھا، تو اب ان کا مال ان کے حوالے جو کرنا ہے نا، وہ اس سے پہلے آپ ان کے عقل کو ٹیسٹ کر لیں. تو اس میں ہم پیج نمبر 304 کے اوپر پہلا پیراگراف تک پڑھ چکے تھے کہ اب اصل ٹاپک جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اس آیت کی تفسیر والا، کہ نابالغوں کی سمجھ اور صلاحیت جانچنے کا حکم. تو فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ جب تک معاملات میں نابالغوں کی ہوشیاری ثابت نہ ہو جائے، معاملات میں ہوشیاری، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ قسم کی ہوشیاری ہوتی ہے کہ آپس میں یعنی انسانوں کے ساتھ آپ نے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے. ہر چیز کے لیے ایک الگ قسم کی ہوشیاری کی ضرورت پڑتی ہے، عقل سمجھ کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کو تجربہ، عمر اور کچھ آپ کو یعنی ایکسپوجر ہو اس فیلڈ کا، یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو معاملات میں نابالغوں کی ہوشیاری جب تک ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک ان کو اموال سپرد نہ کیے جائے. اس لیے دوسری آیت میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام اور پھر امتحان کر کے ان کی صلاحیت معلوم کرنے کے احکام دیے گئے ہیں. تو ارشاد ہوا وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَّغُوا النِّكَاحَ، یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی چھوٹے چھوٹے معمولی معاملات خرید و فروخت ان کے سپرد کر کے ان کی صلاحیت کا امتحان لیتے رہو، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں یعنی بالغ ہو جائیں. نکاح کے قابل یعنی بالغ ہو جائیں تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں میں الگ الگ پہچان ہوا کرتی ہیں. تو جیسے کیونکہ مردوں کی کلاس ہے تو لڑکوں میں بلوغت کی پہچان جو ہوتی ہے وہ शुरू तो हो जाती है 9 साल की उम्र से, यानी इवन डॉक्टर्स ने भी लिखा है कि 9 साल की उम्र से ना आसार आने शुरू हो जाते हैं। और वो आसार क्या होते हैं कि बदन के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आर्मपिट्स के अंदर बाल आने शुरू हो जाते हैं, और जेरे नाफ जो एरिया होता है वहां पर भी बाल आने शुरू हो जाते हैं, और पसीना जो है वो ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है, पसीने के अंदर बदबू भी होनी शुरू हो जाती है। उससे पहले जो है वो पसीने में बच्चों के ऐसी बदबू नहीं होती है, तो बदबू का हो जाना पसीने की ये भी यानी निशानी होती है कि अब बुलूगत जो है ना वो इब्तिदा हो चुकी है। आवाज जो होती है वो बहुत कोर्स हो जाती है, भारी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे कि बच्चे की आवाज जो थी वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी, लेकिन अब एकदम उसकी आवाज जो है भारी भरकर भारी जैसे होनी शुरू हो गई है, तो ये भी एक निशानी होती है कि ये बुलूगत की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये सारी जो निशानियां होती हैं ना, ये बालिग हो जाने की निशानी नहीं होती, बल्कि बालिग
बिल्कुल
होने की तरफ ये बढ़ना शुरू हो गया है। बालिग होगा कब? बालिग होगा कब? वो उस वक्त होगा जब इसको इह्तलाम होगा, वेट ड्रीम जिसको कहते हैं, इह्तलाम होना, यानी उस वो जब मनी खारिज होती है, ठीक है, जिसको सीमेन कहते हैं अंग्रेजी में, वो जब यानी आपके पेशाब की जगह से सीमेन खारिज होती है ना, तब जो है वो यानी कट ऑफ टाइम होता है, ठीक है, या वो डिसाइडिंग टाइम होता है कि बस अब बालिग हो गया। अब बालिग हो जाने का मतलब ये होता है कि अब उसके ऊपर शरीयत के अहकामात जो हैं वो फर्ज हो चुके होते हैं। इससे पहले जो थे ना वो ट्रेनिंग चल रही थी, अभी एक्चुअल मैच शुरू नहीं हुआ था, ठीक है, पहले ट्रेनिंग चल रही थी, और उसमें फिर उसको 7 साल की उम्र से नमाज के लिए कहना शुरू कर देना था, ठीक है। अब वो कहने का मतलब पढ़वाना भी, वो पढ़ ले तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो पढ़ ले, पढ़वाना भी चाहिए, ज्यादा भी कह सकते हैं कम भी कह सकते हैं, कभी बहुत उसको मुश्किल हो रही है कि भाई वो नमाज नहीं पढ़ रहा, यानी स्पेशली फजर के वक्त है, ठीक है, तो बच्चा उठ नहीं पा रहा, तो अब उसमें यानी इतनी ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सख्ती की उम्र तो 10 साल से शुरू होगी ना, अभी 7 से लेकर के 10 साल की जो उम्र है उसमें सख्ती का तो हुक्म नहीं है, कहने का हुक्म है। तो माँ बाप जो है वो ये हुक्म बच्चे को नहीं है, ये माँ बाप ये कहने का हुक्म किसको है, ये तो माँ बाप को हुक्म है ना कहने का, तो माँ बाप इस हुक्म को पूरा करें, यानी वो बच्चों को कहें, ठीक है, नहीं पढ़ रहा सख्ती करने की इजाजत नहीं है, कहने का हुक्म है तो आप कहें, सही है, और उसका उसको एनकरेज करें, उसको जो है वो शाबाशी दें कि बेटा तुमने नमाज पढ़ी बहुत अच्छा किया, और अल्लाह ताला तुमसे खुश होंगे, तुमने बहुत अच्छी यानी मेहनत करी कि सुबह को उठ करके तुमने फजर पढ़ी, फजर पढ़ने के बाद उसको और ज्यादा बकअप करें, ठीक है, तो ये सब जो है ना वो कहने में आ जाएगा। 10 साल की उम्र के बाद अब उसको खाली कहना नहीं है बल्कि उससे पढ़वाना भी है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर सख्ती की इजाजत शुरू हो गई है, यानी आप सख्ती का मतलब ये नहीं कि डंडे से उसको मारना शुरू कर दें या थप्पड़ मारना शुरू कर दें, बल्कि सख्ती का मतलब कि आप अपने लहजे के अंदर सख्ती कर सकते, ठीक है ना, कि भाई क्यों नहीं पढ़ी तुमने, पढ़ी पढ़नी है तुमने, पढ़नी जरूरी है, ठीक है, इस तरीके से कह के उसके ऊपर सख्ती कर लें। लेकिन अब जैसे आज सुबह भी एक आप में से एक भाई ने सवाल किया था कि भाई उसको फजर का वक्त है और सर्दी का मौसम है, सख्त सर्दी हो रही है, उससे जो है वो इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो मस्जिद जाकर के आपके साथ नमाज पढ़े, ठीक है, तो भाई अभी तो उसकी उम्र जो है वो बलूगत की उम्र तो नहीं हुई ना, अभी तो 10 साल की उम्र हुई है ना, तो 10 साल में नमाज पढ़वाने के लिए सख्ती करने का हुक्म है ना, मस्जिद जाने के लिए तो सख्ती का यानी इतना उसके ऊपर नहीं करना चाहिए कि जी मस्जिद भी लेकर के जाना है और फजर में सर्दियों के दिनों में उसको मस्जिद लेकर के जाना है, ठीक है, हालांकि मस्जिद जाने का हुक्म नहीं है, नमाज पढ़ाने का हुक्म है, वो मुफ्ती अजाज साहब तो पूछते रहिएगा कि जी फतवा किस चीज के ऊपर और वगैरह वगैरह, लेकिन उसके लिए अगर मुश्किल क्रिएट करेंगे ना तो वो नफरत करना शुरू हो जाएगा फिर इस वाले से, ठीक है, तो नफरत भी तो नहीं करवानी है ना बच्चे को कि वो नमाज से नफरत ही करना शुरू हो जाए या मस्जिद जाने से नफरत करना शुरू हो जाए, ठीक है, तो पढ़वाना है 10 साल की उम्र से उसको पढ़वाना है नमाज, अब खाली कहने का हुक्म नहीं है, अब पढ़वाने का, ठीक है। और उसके बाद बुलूगत जो होती है वो उम्र लड़कों के अंदर 12 साल, 13 साल, 14 साल भी, जब उनको एहतलाम होता है, एहतलाम की आपको पहले से उनको ना यानी बताना पड़ेगा कि अगर आपको कभी ऐसा फील हो कि जैसे आपका पेशाब लीक हो गया है बिस्तर के अंदर, और उसमें यानी जब भी लीक हो तो आपने बताना है, वैसे ही पेरेंट्स को बताना है, ठीक है। लेकिन स्पेशली अगर उसके अंदर कुछ हार्ड चीजें भी आपको नजर आती है ना, जो कि यानी जरा क्या कहते हैं थिक जिसको कहेंगे उर्दू में, अब सीमन को आप इस तरह तो डिफाइन नहीं कर सकते कि सीमन एग्जैक्टली क्या चीज होती है, उसकी तस्वीर वगैरह दिखाने का भी कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बच्चे का जहन बनाना होता है कि जिस वक्त आपको ये हो ना तो उस वक्त आपने जरूर से बताना है, और उस वक्त जो है वो आपके ऊपर नमाजें फर्ज हो जाएंगी, ठीक है। अब ये नमाजें फर्ज होने का भी उनको जो बताना है वो भी ऐसे नहीं कि एक मुसीबत आ जाएगी आपके ऊपर, कि वो जो है वो मुसीबत से डर के मारे आपको बताए नहीं कि भी जब तक अब्बू को पता नहीं है उस वक्त तक ज्यादा बेहतर है, वरना तो फिर पता नहीं क्या मेरे ऊपर पहाड़ टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी उसके सामने ना रखें इसको कि जी अगर तुमने बता दिया तो फिर तो हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हारे लिए जो है वो जिंदगी जो है वो अजाब हो जाएगी, और यू बेटर टेल अस, ठीक है। इस तरीके से भी उसको कहें, सही है। बच्चे को नमाज की तरगीब और उसके फजाइल के जरिए से नमाज का शौक वगैरह इस तरह से पैदा करने की कोशिश करें ताकि वो उससे घबराए नहीं, डरे नहीं, वो फील करे कि मुझे जो कुछ मेरे पास है वो तो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, और अल्लाह ताला ने मुझसे सिर्फ दिन के अंदर 5 नमाजें एक्सपेक्ट करी, ठीक है। यानी अमाल की हद तक जो है वो 5 नमाजें इंसान के ऊपर जो कि रोजाना फर्ज होती हैं, तो इस तरीके से वो अपने आप पर बोझ ना समझे बल्कि अल्लाह ताला का हक समझ करके नमाज पढ़े ना, ठीक है। तो ये कैफियत बच्चे के अंदर होगी ना जब डेवलप हो जाएगी, तो इसी को कहेंगे कि बच्चे की अच्छी तबीयत हो गई, ठीक है। तरबियत इसी को कहते हैं कि वो चीज की जो अहम चीजें हैं उनकी अहमियत को समझना शुरू हो जाए। बेशक उससे कभी कभार गलती हो जाया करेगी, वो खेल कूद के अंदर भूल जाएगा नमाज पढ़ना, या कभी जो है उसका मिजाज ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ही हशाश बचाश होकर के नमाज पढ़े, बड़े बड़ों का मिजाज नहीं होता। ये कब्ज की कैफियत जो होती है कि जिसके अंदर इंसान को पता होता है कि उसने इबादत करनी है लेकिन वो अपने आप को इबादत के ऊपर माइल नहीं कर पा रहा होता, उससे इबादत नहीं हो पा रही होती, या इबादत हो रही होती है तो उसका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा होता। तो ये तो बड़े बड़ों के साथ ही कैफियत होती है, बाकायदा मशायख ने इसके लिए टर्म कॉइन करी है, कब्ज की कैफियत। तो जब बड़े बड़ों के अंदर कैफियत हो सकती है तो 12 साल के बच्चे में क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। तो 12 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट ये नहीं करनी चाहिए कि वो तो यानी अब से जो है वो अल्लाह की विलायत उसके का तमगा जो है ना वो उसके गले के अंदर पड़ चुका है, और अब जो है ना वो जो यानी जौक और शौक के साथ नमाज पढ़ना शुरू हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। हम इतना साल मशाय के साथ रहे और हमने न जाने कहाँ कहाँ यानी क्या क्या कुछ नहीं किया, कितना कुछ इल्म हासिल किया, हमारे अंदर अभी तक ये जौक शौक की कैफियत पैदा नहीं। तो आप 11-12 साल के बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाली कैफियत ना, ठीक है। तो अक्सर वालदैन इस तरह की शिकायत करते हैं कि पढ़ता तो है लेकिन शौक से नहीं पढ़ता। भाई आप शौक से पढ़ते हैं क्या? आपको बहुत ज्यादा शौक होता है नमाज का, ठीक है, या अगर होता भी है तो कभी कभार होता है, ज्यादातर तो शौक नहीं होता नमाज पढ़ने का, मार बांध करके पढ़ रहे होते हैं अपने आपको ज्यादा से ज्यादा, वरना तो अक्सर लोगों की तो कदा भी हो जाती है, वो तो कोई बताता नहीं है ना असल में कि कदा कितनी होती है नमाजें, ठीक है ना। वो कभी कभार मुंह से गलती से निकल जाते तो अंदाजा होता है कि अच्छा इनकी तो नमाजें ही नहीं हो रही, फर्ज नमाजें ही नहीं हो रही थी, वो बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला निकलवा देता है तब पता चलता है, वरना तो कोई बताता ही नहीं है कि नमाजें कदा हो रही है। हालांकि ये बताने की चीज है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का इलाज दुआ से और दवा से करना पड़ता है ना। तो अगर इस किस्म की प्रॉब्लम्स हो कि नमाज कदा हो रही है नहीं मिल रही है, तो ये तो सबसे पहले बताने वाली चीज है, लेकिन इसी को छुपाना शुरू कर देते हैं, यानी डॉक्टर के पास जाकर के ना मस्क छुपाना शुरू कर दे बंदा, तो कितना अच्छा उसका इलाज होगा फिर उसके बाद। तो बहरहाल तो बच्चे को जो है वो इस तरीके से जहन साजी करनी होती है, तो उसमें आपको फिर बताना भी पड़ता है कि जी कब आपके आसार शुरू हो जाते हैं अबलुगत के। अच्छा, इसके अंदर जो है वो ये जो लिबरल्स और रोशन ख्याल किस्म के लोग हैं ना, इनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। खुसूसन अमेरिका के जो वो जो होते हैं ना, अमेरिका जाकर के जिनको दीन की सूझती है, ठीक है, वहां पे चले गए सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद फिर जो है वो दीनदार बनने की सूझती है ना, तो उनको बहुत ज्यादा रोशन ख्याली सूझती है। फिर यू शुड टॉक अबाउट एवरीथिंग, यू शुड टेल योर किड एवरीथिंग, ठीक है ना। वो एवरीथिंग के चक्कर में उनको फिर ये समझ में नहीं आ रही होती कि क्या बताने की जरूरत है क्या बताने की जरूरत नहीं है, क्या कहने की जरूरत है और किस किस बात को कहे बगैर भी काम चल सकता है, जी बिल्कुल, जैसे सेक्स एजुकेशन जिसको कहते हैं, ठीक है, ये सेक्स एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, सेक्स एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं होती, सही है, अपने मशाइख के तरीके के ऊपर चलने में ही खैर है, इन इन बेवकूफों के तरीके पर चलने की जरूरत नहीं है, इनकी बातें सुन सुन करके ना हमारा दिमाग भी जो है इनकी तरीके से चलना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो सेक्स एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं होती, सीधा सीधा से उनको बता दें कि बेटा अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर चेंजेस है ना, आप बड़े हो रहे हैं, आपका पहले जो है वो ऐसा नहीं होता था, वैसा होता है, उसी तरीके से बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, उसी तरीके से आवाज जो है वो अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई होती है कि आवाज जो है वो भारी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो अल्लाह ताला अल्लाह ताला अल्लाह ताला, आज सुबह यही पढ़ रहे थे ना तबीयत औलाद के जो सुनहरी उसूल वाली किताब है जी की, तो उसमें यही पढ़ रहे थे ना कि माँ जो है वो हर चीज के अंदर बेटी के सामने अल्लाह अल्लाह ने ऐसा किया, अल्लाह ताला ने ऐसा किया, अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी, अल्लाह ताला की नेमत हमसे जाया हो गई, राइट, अल्लाह ताला से हम माफी मांगने, अल्लाह ताला हमें माफ कर देंगे, तो क्या ये काम सिर्फ माँ ने करना होता है, बाप ने ये काम नहीं करना होता, अल्लाह की याद है, अल्लाह का तस्करा बेटे के सामने बाप ने नहीं करना होता, हाँ तो बाप ने भी करना होता है, राइट, तो बाप भी इसी तरीके से रहेगा कि बेटा अल्लाह ताला ने पहले ये आपके साथ मामला किया था, फिर अल्लाह ताला ने आपके ऐसे बना दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, ये अल्लाह ताला के निजाम है, बेटे को इससे ज्यादा सेक्स एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, ना बेटी को जरूरत होती है, ठीक है, और दूसरा मसला जो है ना स्कूल का, स्कूल के अंदर जो उसकी सेक्स एजुकेशन हो रही होती है, तो भाई उसके लिए आप बच्चे को पहले से तैयार करेंगे, बेटा स्कूल जाकर के आपने ये सेक्स एजुकेशन नहीं हासिल करनी, ना आपको इसलिए नहीं भेजा स्कूल कि आप वहां पर जो है वो बच्चों के साथ जो है वही वाली बातें करना शुरू हो जाए, ठीक है, वहां पर अगर कोई आपसे इस तरीके की बात करें आप उसको शट ऑफ कर दें, ठीक है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, ठीक है, यह बातें बच्चों को पहले से समझानी होती हैं, बच्चों को स्कूल के अंदर दोस्तियां लगाने की तालीम मत दें, ठीक है, बच्चों को ना अपने सोशली एक्सेप्टेबल एनिमल्स बनाने की जरूरत नहीं है कि वो स्कूल में जाकर के बहुत ज्यादा उनकी वाह वाह हो और लोग उनको जो है वो बड़ा अच्छा समझें और बड़ी जो है वो पब्लिकली एक्सेप्टेबल फिगर्स हो, वो पब्लिकली एक्सेप्टेबल फिगर क्या होती है, शैतान सबसे ज्यादा पब्लिकली एक्सेप्टेबल होता है, सबसे ज्यादा मुरीद किसके होते हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा मुरीद शैतान के होते हैं, ठीक है, तो अगर ज्यादा मुरीदों के चक्कर में रहेंगे ना तो शैतान के रास्ते पे चलना पड़ेगा, ये लाजमी है, अगर मुरीदों की तादाद बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, शैतान के रास्ते पे चलना पड़ेगा, इसलिए कि सबसे ज्यादा मुरीद शैतान के होते हैं, तो अपने बच्चों को शैतान के रास्ते में मत डालें, ठीक है, पॉपुलैरिटी फिगर पॉपुलर फिगर बनाने की उसको किसी किस्म से ना एक्सप्लिसिटली ना इम्प्लिसिटली ना डायरेक्टली कोई ऐसी बात करें कि जिससे पॉपुलैरिटी की उसके सामने ताजीम होती हो, ठीक है, पॉपुलर बनने की अजमत उसके दिल में पैदा होती हो, ना डायरेक्टली कोई ऐसा कलमा कहें और ना इनडायरेक्टली इंप्लाई करें इस बात को, किसी ऐसे शख्स की तारीफ ना करें कि जो कि फकत लोगों में पॉपुलर होने की वजह से अच्छा समझा जाता, उस शख्स की कभी तारीफ ना करें अपने बच्चे के सामने, इसलिए कि अगर आप उसकी तारीफ करेंगे वो समझेगा कि मेरा बाप कह रहा है कि दिस इज द राइट वे, तो मुझे भी यही काम करना चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से बच्चे जो है ना वो कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है, माँ बाप की प्रायोरिटीज को देख करके बच्चे कंक्लूजन निकालते हैं कि अच्छा हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, इसलिए कि यही चीज हमारे माँ बाप के नजदीक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ना एक्सप्लिसिटली कोई बात करें ना इम्प्लिसिटली इस तरीके की बात करें जिनसे दुनिया की अजमत झलकती हो, लोगों की दुनिया वालों की अजमत झलकती हो, दुनिया के पॉप स्टार्स की, क्रिकेट स्टार्स की, मनहूस राइट, इन मनहूस क्रिकेट स्टार्स की अजमत झलकती हो या किसी और स्पोर्ट्स स्टार की अजमत झलकती हो, इसी तरीके से ना हम ये हरकतें कर करके जो है ना अपने बच्चों को दुनिया की मोहब्बत की तरफ धकेल रहे हो, हम इसी तरह की बातें कर हम खुद उनको धकेल रहे होते हैं दुनिया की तरफ कि वैसा हो गया, नाफरमान हो गया, ये इसको दीन की फिक्र नहीं है, इसको आखिरत की फिक्र नहीं है, इसको अल्लाह की फिक्र नहीं है, इसको रसूल की फिक्र नहीं है, आपको कहाँ थी, आप क्या कर रहे थे जिस वक्त आपने इसके दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत को बसाया था, आप क्या कर रहे थे उसको, राइट, ये आपका क्या धर है सारा का सारा कि जिसकी वजह से बच्चा ऐसा बना, ठीक है, तो ऐसी बातें करने ना, जब भी कहते हैं पहले तोलो फिर बोल, ठीक है, तो जिनको ज्यादा बोलने की आदत होती है ना और दिल के अंदर मोहब्बत दुनिया की बसी हुई होती है, जो दिल के अंदर होता है ना वही जुबान के अंदर जुबान पर आता है, जुबान जो होती है ना वो चम्मच की तरह होती है, चम्मच, ठीक है, तो हांडी के अंदर जो चीज होती है ना तो चम्मच वही चीज निकालेगी, सही है, अगर हांडी के अंदर जो है वो आपने पाए बनाएगा, बना के रखे में तो चम्मच से जाए वो बिरयानी निकलेगी, बिरयानी तो नहीं निकलेगी ना, पाया ही निकलेगा ना। सही है, मुंह में पानी आ रहा है किसी के। तो जुबान जो होती है ना ये चम्मच की तरीके से होती है, दिल के अंदर जो कुछ होता है वो बाहर निकल रहा होता है जुबान के जरिए से। ठीक है, तो अगर दिल के अंदर गंध भरी हुई है तो फिर इस चम्मच को जो है ना वो साइड पे रखें, इस चम्मच को साइड पे रखें, इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, क्योंकि जब ये इस्तेमाल होगा तो वो गंध ही बाहर निकलेगी। सही है, तो दिल को साफ करने के ऊपर मेहनत करनी चाहिए और फिर इस चम्मच को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अच्छी चीज को दिल के अंदर से बाहर निकले। अच्छा, जब बच्चे सो जाएं और फिर नमाज के लिए ना उठें तो कैसे हैंडल करें? याजिस कैसे उठाता है अपने बच्चों को? माशाल्लाह हर एज के अंदर बच्चे हैं, ठीक है, बालिग बच्चा भी है और बुलूगत के करीब बच्चे भी हैं। सही है, तो मुश्किल होती है उनको उठना फजर के वक्त में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बालिग बच्चे को तो मुश्किल अब नहीं होती, जब नहीं थे बालिग तो उस वक्त थोड़ी सी होती थी। ठीक है, तो ये आज ना अजान शुरू करता है, अजान उनके कान में जाके बहुत प्यार से, स्पेशली जैसे अभी है जो नाबालिग हैं बुलूगत के करीब इंशाल्लाह कुछ अरसे में, तो प्यार से बहुत प्यार से और अजान के अल्फाज हय्या अलैहि सलाह, जब उनको समझ में आ गई कि हय्या अलैहि सलाह का मतलब क्या होता है तो हय्या अलैहि सलाह कह के नमाज की तरफ आओ, हय्या अलैहि फलाह कह के। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्वर्सेशन, बच्चा सोता है लेकिन उसके कान में आवाजें पड़नी शुरू हो जाएंगी और फिर अस्सलातु खैरु मिनन नौम, नमाज नींद से ज्यादा अच्छी है, नमाज नींद से ज्यादा अच्छी है, अस्सलातु खैरु मिनन नौम। ये अजान के अल्फाज क्यों रखे गए हैं अस्सलातु खैरु मिनन नौम, राइट, कि नौम से ज्यादा अच्छी चीज है ना, ये इंसान को याद दिलाना पड़ता है ना। अगर याद दिलाने की जरूरत ना होती ईमान वालों को तो फिर अस्सलातु खैरु मिनन नौम अजान में रखने की जरूरत क्या थी? तो जब इतने बड़े बड़े ईमान वालों को याद दिलाने की जरूरत थी मदीना मुनव्वरा में नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में, तो आजकल का एक नाबालिग बच्चा या बालिग बच्चा जो कि टीन एज उम्र में अभी दाखिल हुआ है उसको अस्सलातु खैरु मिनन नौम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिर भी अगर ना उठ रहा हो तो फिर उनको याद दिलाते हैं कि जो कल हमने इतनी अच्छी चीजें खाई थी, इतनी अच्छी जगहों पर हम गए थे, इतना अच्छा जो आपका वक्त गुजरा था ये कहाँ से आया आपके पास? सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है ना, राइट, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है ना, तो अल्लाह ताला कब क्या हम क्या हमें शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही तो नमाज फर्ज करी है फजर के टाइम में, ठीक है, तो क्या अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा करेंगे? अगर अल्लाह ताला ने कहा कि भाई ये मेरा शुक्र तो अदा नहीं करती ये बच्ची, मेरी बेटी जो कि अभी जो नाबालिग है वो, भाई अगर अल्लाह ताला ने ये कहा कि मेरा शुक्र तो अदा नहीं करती, नमाज नहीं पढ़ती, तो चलो अब मैं तुम्हें नहीं देता, अब मैं खाने की ये चीजें नहीं दूंगा, अब मैं जो हूँ वो इस तरह की जो मजे की चीजें मिली थी, एंजॉय जो आपने किया था, जो हम किसी जगह पर गए थे, अब ये चीजें नहीं नहीं दूंगा मैं इस बंदे को। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? बच्चों को सब समझ में आ जाती है, बच्चा उड़ जाता है उसके बाद। ठीक है ना, इस तरीके से बच्चे से बात करें, बच्चों को दिन में भी समझाएं कि बेटा सब कुछ जो है ना ये अब्बा का लाया हुआ नहीं है, ये अब्बा नहीं लेकर के आते हैं, अल्लाह ताला अब्बा को देते हैं तो अब्बा लेकर के आते हैं, और अगर अल्लाह ताला फैसला कर ले कि अब्बा को नहीं देना है तो फिर तुम लोग कुछ कर लोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। ठीक है, और अल्लाह ताला जिस तरह से शाम वालों से छीन सकते हैं ना, बर्मा वालों से छीन सकते हैं ना, तो उसी तरीके से हमसे भी छीन सकते हैं, तो डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। ठीक है, ये जागने के वक्त में बच्चे का जहन बनाना पड़ता है, तब सोने के वक्त में फिर आप उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, हमें तो किसी ने नहीं बताया, जुम्मे के बयान सुनकर धीरे धीरे समझ में आया, अब तो आ गया ना अल्हम्दुलिल्लाह। बायोलॉजी में 10th स्टैंडर्ड में स्टडी करना पड़ता है जी, खैर वो सारी चीजें तो अब हो गई, जो चीज गलती हो गई उसके ऊपर खुद भी माफी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से और अपने माँ बाप के लिए भी मगफरत की दुआ करनी चाहिए ना। रब्बिर हमहुमा कमा बयानी सगीरा, उन्होंने नमाज पढ़नी नहीं सिखाई थे और ये तहारत के मसले नहीं सिखाए, लेकिन खाना वाना तो खिलाते थे ना, राइट, और जब बाथरूम जाते थे तो धुलवा तो देते थे ना, ये भी काम कोई कम तो नहीं है कि बच्चे की नजासत जो है वो साफ कर दें। ठीक है, तो उनका एहसान तो इन एनी केस है ही, बहुत एहसान है उनका, तो उनके लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए और आइंदा ये गलती ना दोहराने का अजम करना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ ये गलती नहीं दोहराएंगे तो हमारे माँ बाप ने हमारे साथ कर ली थी। ठीक है, फैमिलीज में भी ऐसे लोगों की तरदीद, क्या तारीफ करते हैं। हाँ, तो जब कभी फैमिली मेंबर्स दुनियादारों की तारीफ करें ना, तो उस तारीफ की कैंसिलेशन करें बच्चों के सामने, ठीक है? कहीं कोई आपके फैमिली के बुजुर्ग साहब जो हैं, वो किसी पॉप स्टार की या क्रिकेट स्टार की जो है वो खूब अजमत बयान कर रहे थे ना आपके बच्चों के सामने, ठीक है? तो आप खामोशी से सुनते रहे, ठीक है? एक एक थोड़ी देर में खत्म कर देंगे, ठीक है? उसके बाद फिर बच्चे आपके पास आएंगे ना, तो अब आप उनकी ब्रेन वॉशिंग करें, ब्रेन वॉशिंग, ठीक है? वो जो गंद उन्होंने डालने की कोशिश करी आपके बच्चे के अंदर, उसको अब आप निकालें, ठीक है? तो ब्रेन वॉश कर सकते हैं, हार्ट वॉश करें और ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक है? इन चीजों को ना इग्नोर ना करें, ये बच्चा है, बच्चा तो भूल जाएगा, नहीं वो नहीं भूलेगा, उसके वजूद के अंदर ये बातें सिरायत कर चुकी हैं। अब जब तक आप इन चीजों को, इनकी नफी करके, यानी नफी कैसे करेंगे, जिस चीज की उन्होंने बड़ाई बयान करी है आप उसकी बुराई बयान करेंगे, ठीक है? जब तक उसकी बुराई बयान नहीं करेंगे ना, वो चीज उसके दिल से नहीं निकलेगी, और यू बेटर बी गुड एट इट, ठीक है? ये जो बुराई बयान करना है ना, इसको सीखना पड़ेगा कि कैसे बुराई बयान की जाती है, ठीक है? ऐसा ना हो कि अच्छाई बयान करने वाले ने तो बहुत जबरदस्त तरीके से अच्छाई बयान कर रही है, और बुराई बयान करने वाला जो है ना, बहुत ही मरियल तरीके से बुराई बयान कर रहा है, ठीक है? तो फिर कौन सी चीज गालिब आ जाएगी? अच्छाई गालिब आ जाएगी, बुराई तो गालिब नहीं आएगी ना, और आपने तो उनकी बुराई को गालिब करना है ना, ठीक है? कल मैं नफी से दुनिया की मोहब्बत निकलती है, जब भी कहते हैं हमारे मशाइख के ला इलाहा इल्लल्लाह, राइट? इल्ला वो अल्लाह जो है ना, उस वक्त आता है जब गैर अल्लाह की नफी की जाती है, तब अल्लाह आता है अंदर, ठीक है? वो बच्चों के अंदर नफी तो उस वक्त होगी ना, अपने अंदर नफी होगी, पहले अपनी नफी के बगैर बच्चों में नफी नहीं कर सकते ना। चले जी, खुलासा ये है कि बच्चों की मखसूस तबीयत और उनमें अक्ल होश के नशो नुमा के एतबार से उनके तीन दर्जे कर दिए गए। एक तो बुलूगत से पहले, दूसरा बुलूगत के बाद, और तीसरा होशियारी के बाद। यानी बुलूगत के बाद अलग है, होशियारी के बाद अलग है। बुलूग से पहले बच्चों के औलिया को ये हुक्म है कि उनकी तालीम और तरबियत की कोशिश करें, मामलात में उनको होशियार करने के लिए छोटे छोटे मामलात खरीदो फरोख के उनके हाथ से कराएं। आयत में वबतलुल यतामा का यही मतलब है, यानी उनको इब्तिला करो, आजमाइश में मुब्तला करो यतीमों को। इससे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह मसला अखज किया है कि नाबालिग बच्चे जो मामलात खरीदो फरोख अपने वली की इजाजत से करें, वो सही और नाफिज हैं, क्योंकि वली ने इजाजत दे दी है और वो इजाजत से ही काम कर रहे हैं। तो अगर वो कोई पैक्ट कर लें, कोई एग्रीमेंट कर लें, तो वो इमाम अबू हनीफा के नजदीक जो है ना, वो नाफिज माने जाएंगे, यानी उनको आप ऐसी एनल नहीं कर सकते, ये तो बच्चे नहीं किया था तो बच्चों का करना जाए, उसकी क्या बात, उसकी क्या अहमियत है, इस तरह नहीं कर सकते। दूसरा हुक्म यह है कि जब वो बालिग और निकाह के काबिल हो जाएं, तो अब मामलात और तजुर्बे के एतबार से उनके अहवाल की जांच करो। अगर देखो कि वो अपने नफा नुकसान को समझने लगे हैं और मामलात सलीके से करते हैं, तो उनके माल उनके हवाले कर दो, ठीक है? अब ये सारे काम जो है ना, इनके लिए वक्त चाहिए होता है, ठीक है? और इनके लिए फिक्र चाहिए होती है। अगर आपके पास वक्त नहीं होगा, या अगर आपके पास दफ्तर से तो वो वक्त बच भी गया लेकिन बाकी जो है वो टॉक शो सुनने में गुजर गया, ठीक है, या ड्रामे देखने के अंदर गुजर गया, या जो है वो क्रिकेट का पीएसएल फॉलो करने में गुजर गया, तो फिर इन सब चीजों के लिए वक्त कहाँ से लाए, ठीक है ना? तो इन चीजों को तो सीखना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद सिखाना पड़ेगा। तो यहां तो बात हो रही है, ये जो यतीम है उनको सिखाओ, तो यतीम से ज्यादा हक तो अपने बच्चे का होता है ना, तो अपना बच्चा तो हर एक के पास होता है, यतीम तो चंद लोगों के पास होता है, ठीक है? तो अपने बच्चे को भी तो ये सारी चीजें समझानी उमझानी है ना, तो इनके लिए वक्त चाहिए होता है, और इंसान का दिमाग जो है ना थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, तब वो ये सारे काम कर सकता है। इंतहाई बिजी माइंड जो होता है ना, वो ये सारे काम नहीं कर सकता। तो अपने दिमाग को जरा क्लटर से, ये क्लटर कहते हैं ना, गार्बेज जो हमारे दिमाग के अंदर गार्बेज भरता रहता है, खुसूसा आजकल के व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए से, तो इस गार्बेज से अपने दिमाग को बचाना पड़ता है, ठीक है ना? और ये गार्बेज से मेरी मुराद सिर्फ जो है वो वाहियात और बुरी चीजें नहीं है, बल्कि अनफॉर्चुनेटली जो दीनी मैसेजेस भी आते हैं ना, ये दीनी मैसेजेस भी जो है वो इतने ज्यादा आते हैं, इतने ज्यादा आते हैं
कि दिमाग में जाकर के फिर इनका कोई फायदा नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। आपका दिमाग मुस्तकिल जो है वो बिजी रहता है, वो कोई एक काम भी ठीक तरीके से नहीं कर सकता, ठीक है ना। एक कैपेसिटी होती है ना इंसान के दिमाग की, बल्कि इंसान के बदन की भी एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी के अंदर अगर वो रहे ना तो फिर वो अपने कामों को मैनेज कर सकता है, लेकिन जिस वक्त उसकी कैपेसिटी एक्सीड कर जाती है, ठीक है, जितना उसका यानी वसत थी उतनी वसत से जब आपने ज्यादा बोझ डाल दिया ना, तो अब ये नहीं होगा कि जितना आपने एक्स्ट्रा बोझ डाला है सिर्फ वो मुतासिर होगा, ठीक है, बल्कि सब कुछ मुतासिर होगा, सब कुछ मुतासिर हो जाएगा। जीरो से लेकर के जो आपकी लिमिट थी ना, जो आपकी लिमिट में मुमकिन था वो भी मुतासिर होगा, और जो उसके अलावा डाला है वो भी मुतासिर होगा, ठीक है। तो कैपेसिटी एक्सीड होने से सारी की सारी एफिशिएंसी मुतासिर हो जाती है, ठीक है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा फैक्टर है इसका वो है सोशल मीडिया, ठीक है। तो इस वजह से ना जिन लोगों को शौक लगे हुए हैं ना, खुसूसन आज का सबक, ठीक है, पता नहीं क्या मतलब ये आज का सबक सबने सब्सक्राइब किया हुआ है, और उसके अंदर जो है वो वजीफे भी आते रहते हैं और न जाने, तो भाई देख दाख करके करना चाहिए ना कि आज के सबक से जो है वो आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं आपकी जो है वो आपके खिलाफ हुज्जत तो नहीं तमाम हो रही है कि हाँ जी सारे मैसेजेस के पास पहुंच चुके थे, अमल इसने किसी के ऊपर भी नहीं किया या एक आध के ऊपर अमल किया, ठीक है। तो क्यों इस तरीके की सब्सक्रिप्शन कर करके जो है वो अपना बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन को खत्म करने की जरूरत है, खाली दुनियावी नहीं दीनी भी, ठीक है ना। दीन के अंदर भी यकसुई के बगैर इंसान नहीं कर सकता कुछ, और खुसूसन वो लोग जो कि तसव्वुफ के रास्ते के ऊपर कदम रख करके शैतान से अपने आप को महफूज करने का टारगेट रखना चाहते हैं, उन लोगों तो यकसुई के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते आगे, ठीक है। तो ये फिना चाहिए होती है उसके लिए ना, फिनाए कल्बी हासिल करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के शैतान से हिफाजत मिलती है। और फिनाए कल्बी जो होती है ना, ये ऐसे नहीं हासिल होती कि इंसान को 10,000 मैसेजेस आते रहे और वो जो है वो हर किस्म की चीजों के अंदर इन्वॉल्व रहे, तो ऐसे नहीं फिना हासिल होती। तो इन सब चीजों को अनसब्सक्राइब करना चाहिए। बाकी जो जो शरी जरूरत है, जॉब की जरूरत है, ठीक है, रिश्तेदारों के साथ मिनिमम कांटेक्ट रखना, ठीक है, ताकि हाल अहवाल आपको पता चल सके, तो उस हद तक जो है वो फिर भी इजाजत हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसके आगे नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और इन चीजों को अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना चाहिए। अच्छा, बुलूग की उम्र इस आयत में, अच्छा एक मिनट, उन्होंने क्या लिखा है, बच्चों को अल्लाह की नाफरमानी से बचने के लिए क्या बच्चों से कुछ काम लेना है, तो कैन या कुड इस्तेमाल कर सकते, क्या पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चों को कोई काम के लिए कहें या काम करो, अगर बच्चा वो नहीं कर सकता तो वो नाफरमानी होगी। अच्छा, समझ गया। ऐसी सूरत में उनको हुक्म देने के बजाय बेटे ये बात या काम कर सकते क्या, बोल सकते क्या। अच्छा जी, हमारे मशायख जो हैं वो बहुत ज्यादा जो माशाल्लाह तकवे का ख्याल रखते थे और बहुत बहुत एहतियाती जिंदगी गुजारने वाले, तो वो अपने साथ भी ये मामला रखते थे कि नाफरमानी बिल्कुल भी ना हो, और अपने बच्चों को जो है नाफरमानी से बचाने के लिए उन्होंने एक तरकीब ये सोची हुई थी कि बच्चों को हुक्म के सीगे में कुछ भी ना कहो, ठीक है, जैसे पानी लाओ, पानी लाइए, ये हुक्म होता है, ठीक है। तो वो किस तरह से कहते थे कि बेटा अगर आप पानी ले आते तो कितना अच्छा होता, ठीक है, या ये सिर्फ इतना कह दें कि जी बेटा प्यास लगी है, ठीक है, तो अब आपने हुक्म तो नहीं दिया ना उसको, बस आपने बता दिया कि प्यास लगी है, अब वो पानी ला दे तो उसको सवाब मिलेगा, और अगर पानी ना लाए तो नाफरमानी का उसको गुनाह तो नहीं मिलेगा ना। तो इस तरीके से अपनी औलाद को नाफरमानी से बचाने की एक तरकीब कुछ मशायख ने सूझी थी, जिसको कि हमारे हजरत ने अपने बयान के अंदर भी जिक्र किया है। तो हाँ, अगर इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से आपके काम जो है वो चल सकते हैं तो फिर अच्छी बात है, लेकिन इसका दूसरा तरीका हमारे लिए, हम जैसे कम यानी मोहतात लोगों के लिए,
वो ये भी हो सकता है कि आप बच्चों के साथ बात तो उसी टेंस में करें, अमर का सीगा जिसको कहते हैं, हुक्म का सीगा, लेकिन उसमें जो है वो ज्यादा सख्ती और एम्फेसिस ना करें। और अगर बच्चा बात नहीं मान रहा है तो दिल ही दिल में उसको माफ भी कर दें, ठीक है, क्योंकि आपका हक नहीं नहीं माना ना, वो आपका हक अदा नहीं कर रहा ना आपकी बात ना मान करके, तो भाई अपना हक उसके ऊपर छोड़ दें, उसको माफ कर दें, ठीक है। अल्लाह ताला से तो मुस्तकिल कम्युनिकेशन, ये तो और भी ज्यादा जबरदस्त बात है ना कि एक बंदे की अल्लाह ताला के साथ मुस्तकिल ऐसी बातचीत चलती रहे कि बच्चे ने बात मान ली तो वो अल्लाह ताला का उसी वक्त शुक्र अदा करे, उसी वक्त शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। और ये एक बहुत बेहतरीन एक्चुअली हमारे मशाइख की बताई हुई तरकीब है कि जो वो कर रहा है उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। और शुक्र अदा करने से क्या होता है, अल्लाह ताला का वादा है कि ल इन शकरतुम ल अजीदन्नकुम, जब तुम शुक्र अदा करोगे किसी नेमत के ऊपर तो वो नेमत बढ़ा दी जाएगी। तो बच्चे ने आपकी बात मान ली, आपने शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला उसको और बात मानने की तौफीक अदा फरमा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी वक्त उसने नहीं भी मानी तो पहले तो उसको माफ करें, फौरन से बोलने उन्होंने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला को बता देंगे, अल्लाह मैंने उसको माफ कर दिया, आप भी माफ कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि उस वक्त अल्लाह ताला से फिर अपने गुनाह के ऊपर माफी मांगे कि अल्लाह यकीनन मेरे अपने गुनाहों का ये नतीजा है, तो अल्लाह मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, जिसकी वजह से आपने मेरे बच्चे को मेरा नाफरमान बनाया, तो उस गुनाह के ऊपर आप मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये फिनाए कल्बी जो होती है ना, ये यही होती है, ठीक है। एक बंदा इस हाल में पहुंच जाता है कि फिर वो उसका अपने रब के साथ जो है ना, वो यानी फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन तो कोई चीज ही नहीं होती बल्कि, ठीक है ना, ऐसा परमानेंट सबमरीन केबल की जैसा, जैसे होता है ना सबमरीन केबल्स कैसी होती है इंटरनेट की, तो उससे ज्यादा स्ट्रांग जो है ना उसका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ बन जाता है, और हर वक्त की कम्युनिकेशन चलती रहती है, ये कम्युनिकेशन फिर कभी खत्म नहीं होती ऐसे बंदे के अपने रब के साथ। अच्छा, तो इस आयत में जहां बुलूग का हुक्म बयान किया गया वहां कुरान करीम ने इस बारे में कि बच्चे का बालिग होना किस उम्र में समझा जाएगा, फैदा बलगो निकाह फरमाकर उसकी तरफ इशारा कर दिया कि असल बुलूग किसी उम्र के साथ मुकैद नहीं है, बल्कि इसका मदार उन आसार पर है जो बालिगों को पेश आते हैं। इन आसार के अतबार से जिस वक्त भी वो निकाह के काबिल हो जाए बालिग समझे जाएंगे, ख्वाह उम्र 13-14 साल ही की हो। अब निकाह के काबिल होने का पिछली क्लास में वैसे बताया था कि निकाह तो उससे कम उम्र में भी किया जा सकता है, लेकिन यहां पर निकाह से काबिल होने का मतलब क्या है, निकाह बमाने जिमा, जिमा समझते हैं ना हम, बिस्तरी जिसको कहते हैं, जिसको इंटरकोर्स कहते हैं, ठीक है। जब वो इंटरकोर्स के काबिल हो जाए ना तो यहां पर वो मुराद है, यहां पर निकाह के काबिल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता इससे पहले, निकाह तो इससे पहले भी पढ़ाया जा सकता है। अच्छा, अलबत्ता अगर किसी बच्चे में आसारे बुलूग नमूदार ही ना हो तो उम्र के एतबार से उसको बालिग करार दिया जाएगा, जिसमें फुकहा का इख्तिलाफ है, यानी उम्र पर फुकहा का इख्तिलाफ है। बाज ने लड़के के लिए 18 साल और लड़की के लिए 17 साल मुकर्रर किए हैं, और बाज ने दोनों के लिए 15 साल करार दिए हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मजहब में इस कौल पर है कि लड़का और लड़की दोनों 15 साल की उम्र पूरी होने पर शरअन बालिग करार दिए जाएंगे, ख्वाह आसार बुलूग पाए जाए या नहीं, यानी बच्ची को पीरियड आए या ना आए, 15 साल की हो गई अब वो डिफाइंड है मच्योर्ड, और बेटे को जो है वो एहतलाम हो या ना हो 15 साल की उम्र पर उसको बालिग ही डिफाइन कर दिया जाएगा। अब होशियारी क्यों कर मालूम होगी, क्यों कर मतलब कैसे मालूम होगी, इस सिलसिले में आनस्तुम मिनहुम रुश्दन की ही तशरीह कि वो यानी रुश्द की उम्र पे पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, रुश्द तो यानी हिदायत या समझ। हुक्म कुरानी ये है कि जब तुम उनमें होशियारी महसूस करो उस वक्त उनके अंबार उनको सुपुर्द कर दो। इस होशियारी की क्या मियाद है, कुरान मजीद ने इस आखिरी मियाद की कोई सराहत नहीं फरमाई, इसलिए बास वहां इस तरफ गए कि जब तक पूरी होशियारी महसूस न की जाए उस वक्त तक उनके अम्वाल उनके सुपुर्द ना किए जाएंगे, बल्कि बदस्तूर साबिक वली की हिफाजत अमानत में रहेंगे, ख्वा सारी उम्र इसी हालत में गुजर जाए। अल्लाह, अगर उसके अंदर वली ने होशियारी महसूस नहीं करी तो सारी उम्र उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे मुल्कों में इसके लिए एज 18 فار گرلس 21 فار بوائز. نہیں یہ انہوں نے کوئی بلوغت کی ایج کو تھوڑی لگائی ہوئی ہے, تو انہوں نے ووٹنگ کی ایج لگائی ہے یا کسی کسی نے جو ہے وہ میرج کی ایج لگائی ہوئی ہے کہ 21 سے پہلے آپ میرج نہیں کر سکتے بچے کی, اور یہ بلوغت کی ایج انہوں نے کوئی نہیں لگائی ہے. ان کی کیا مجال کہ وہ بلوغت کی ایج ڈیفائن کرتے پہلے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ڈیفائن کی ہوئی ہیں نا, تو یہ حکومت اگر لینی بھی چاہے نا تو وہ نہیں لے سکتی. وہ اپنے زوم میں جو ہے وہ کرتی رہے گی ڈفرنٹ ڈیفینیشنز, لیکن ایمان والا تو اپنی ڈیفینیشن حکومت سے تو نہیں لیتا نا. جس چیز کو اللہ نے ڈیفائن کر دیا تو اب وہ چیز جو ہے اول الامر ڈیفائن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اول الامر سے تو آپ وہ والی چیزیں پوچھتے ہیں نا کہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایکسپلیسٹلی ڈیفائن نہیں کری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جن کو گرے ایریاز کہا جاتا ہے, جو چیزیں جو ہے وہ کنٹمپرری ہوتی ہیں, زمانے کے لحاظ سے ایک نئی چیز ہوتی ہے, اس میں اول الامر سے بات کی جاتی ہے, اول الامر کی ہدایت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس میں کہ فقہا جو ہے وہ ایکچولی پہلے آتے ہیں. پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ فقہا سے پوچھنے کے اوپر کے ذمہ دار ہیں, یعنی اول الامر اصل میں فقہا ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے جس کو امیر سلطنت کہا جاتا ہے, وہ پولیٹیکل لیڈر بھی فقہا سے پوچھ کر کے یہ معاملہ طے کرے گا. وہ اپنی جو یعنی چھوٹی سی عقل کی بنیاد پہ نہیں فیصلہ کرتا کرے گا. بہرحال حکومت یہ سارے کام نہیں کر سکتی ہے جو اللہ نے ڈیفائن کیے ہوئے. اچھا, چاہے وہ گھر کی حکومت کیوں نہ ہو. وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ ابا حضور نے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے نا تم بیٹی کو اتنے پیسے دے دینا, اور گھر جو ہے نا تم بھائی لوگ آپس میں بانٹ لینا. ٹھیک ہے, ابا حضور کا یہ یعنی ارادہ یہ ہے کہ ان کی وصیت جو ہے نا وہ ان کے حساب سے ان کے انتقال کے بعد ڈسٹریبیوٹ ہوگی. ابا حضور کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, یہ وصیت کی ڈیفینیشن جو ہے نا کہ کتنا کس کو ملنا ہے, وصیت سوری وراثت جس کو کہتے ہیں وراثت. ٹھیک ہے, یہ وراثت اللہ کی ڈیفائنڈ ہے, یہ ابا حضور کی ڈیفائنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ابا حضور کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وراثت اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ بیٹوں کو کتنا حصہ ملنا ہے, بیٹی کو کتنا حصہ ملنا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹوٹل ترکے کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا بیٹوں اور بیٹیوں میں. ٹھیک ہے, تو ابا کی حکومت نہیں کام کرے گی اس وقت. بالکل اسی طریقے سے جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب ہوتے ہیں ان کی بھی حکومت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ان معاملات میں جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. اگر یتیم بچے مینٹلی ریٹارڈڈ ہوں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی, یہ جو بات ہو رہی ہے تو اس کی یہ سب سے زیادہ تو مینٹلی ریٹارڈڈ کے اوپر ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مینٹلی ریٹارڈڈ میننگ جو اس کے جس کو کہ مجنون کہا جاتا ہے شریعت کے اندر, تو اس کے تو پھر حوالے نہیں کیا جا سکتا نا. لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ مینٹلی ریٹارڈڈ نہیں ہوتے ہیں, لیکن جن کے لیے ایک اچھا ریگولر ٹرم جو ہے نا وہ یہ کہہ سکتے ہیں مینٹلی سلو. ٹھیک ہے, تو سلو سے مراد جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ لیولز آف سلونیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ سلو ایسے ہوتے ہیں کہ جی بس کام جو ہے وہ سلو سلو کر رہے ہیں لیکن کر لیتے ہیں صحیح طریقے سے, لیکن سلو کافی ٹائم لگتا ہے ان کو. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس سے بھی کم کی صلاحیت ہوتی ہے, کچھ اس سے بھی کم ہوتی ہے, کچھ اس سے بھی کم ہوتی ہے. تو یہ تو جبھی تو آپ کو میجر کرنا پڑتا ہے چیزوں کو کہ کس کے اندر کتنی صلاحیت ہے. جیسے بچے ہوتے ہیں اچھے خاصے بڑے 25-26 سال کے ہو جاتے ہیں, لیکن یعنی ذمہ داری والی بالکل بھی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے. تو اسپیشل چائلڈ تو ان کو کہتے ہیں جو کہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں. ان کے لیے ایک اور بھی پراپر ورڈ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ورڈ کیا کہتے ہیں اس کو, ایک تو وہ ٹرم ہوتی ہے نا آٹزم. ٹھیک ہے, آٹزم از ایکچولی ناٹ دیٹ. ٹھیک ہے, آٹزم کی بہت ایک وائڈ اسپیکٹرم ہے آٹزم کا. ہاں جی, ڈاؤن سنڈروم, جزاک اللہ ہے, ڈاؤن سنڈروم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ڈاؤن سنڈروم جو ہے وہ مینٹلی ریٹارڈڈ, آئی تھنک دے آر دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے, ڈاؤن سنڈروم از اکول ٹو مینٹلی ریٹارڈڈ. اور جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں, آٹسٹک از ناٹ ڈاؤن سنڈروم, وہ مینٹلی ریٹارڈڈ نہیں ہوتے. ان کی کچھ اور یعنی پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں, ظاہر ہے بالکل نارمل بچے کے مقابلے میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن کافی حضرات کا یہ اوپینین ہے کہ ایون آٹسٹک بچے جو ہوتے ہیں نا ان کو اگر آپ پراپرلی ہینڈل کریں تو وہ بہت زیادہ امپروو ہو جاتے ہیں. اور ان کی آٹزم جو ہوتی ہے وہ اتنی ڈراسٹک نہیں ہوتی ہے वो कुछ कर ना सकें, वो बिल्कुल ही जो है ना वो डिपेंडेंट हो जाएं अपने पेरेंट्स के ऊपर या दूसरे लोगों के ऊपर, ऐसा भी नहीं होता। बस काफी इसके अंदर एहतियात करने की जरूरत होती है, अकल समझ के साथ जो है वो लेके चलने की जरूरत होती है। बहरा इनके जायदाद में हिस्से का क्या हुक्म है? जहां तक मुझे मालूम है हिस्सा तो उनको पूरा मिलता है। ये आप पूछ रहे हैं, आई डोंट थिंक उसमें जायदाद के हिस्से में उनकी कमी होती है। हाँ, वली को मुकर्रर किया जाएगा और वली को ही इसका हिस्सा दिया जाएगा और वो उसके ऊपर खर्च करेगा। बिकॉज ये बच्चा जो है, इसकी फिजिकल नीड्स तो होती है ना, ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा इसकी फिजिकल नीड्स के ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। तो बाप जो है वो छोड़ करके गया है इसके लिए पैसा, ठीक है, यानी बाप जो मरा है तो उसका पैसा इसी का है ना फिर, तो अब वो वली जो है वो उसके ऊपर खर्च करेगा। मंगोलियन टाइप बच्चे वो उन्हीं को कहते हैं जो डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं ना, एक जैसी शक्ल होती है बेचारों की। अच्छा, टाइम कितना है वापस? अच्छा, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक ये है कि इस जगह अदम होशियारी से वो मुराद है जो बचपन के असर से हो और बालिग होने के 10 साल बाद तक बचपन का असर खत्म हो जाता है, इसलिए 15 साल उम्र बलूग बलूग और 10 साल सन्ने रुश्त वो होशियारी, यानी 10 साल जो है वो रुश्त व होशियारी के साल, सन का मतलब होता है साल, तो ये 10 साल हो गए उसके, यानी कुल 25 साल की उम्र हो जाने पर वो रुश्द होशियारी जरूर हासिल होगी जिसके हासिल होने में बचपन और कम उम्री हायल थी। ठीक है, इमाम अबू हनीफा का मजहब ये नहीं है कि सारी उम्र तक इंतजार किया जाएगा, बल्कि 25 साल तक जो है ना ये मामला हो जाता है, यानी रुश्द हिदायत हासिल हो जाती है। कुरान करीम ने लफ्ज रुश्दन नकिरा लाकर इसकी तरफ इशारा कर दिया है कि मुकम्मल होशियारी और दानिशमंदी शर्त नहीं है, किसी कदर होशियारी भी उसके लिए काफी है कि उनके अम्वाल उनको दे दिए जाएं। इसलिए 25 साल तक इंतजार करके अगर मुकम्मल होशियारी ना भी आए तब भी उनके अम्वाल उनको दे दिए जाएंगे। रही मुकम्मल होशियारी और दानिशमंदी, तो ये बाज लोगों में उम्र भर भी नहीं आती, वो हमेशा सीधे और भोले भाले रहते हैं, इसकी वजह से उनको अपने अम्वाल से महरूम ना किया जाएगा। ठीक है, यानी जो होते हैं ना सीधे साधे लोग जिनको कहते हैं कि लोग बड़ी आसानी से उनको बेवकूफ बना लेते हैं, उनकी रकम जो है वो हथिया लेते हैं इनसे, तो ऐसे बड़े लोग होते हैं, लेकिन इस वजह से जो है वो उनको उनके माल से महरूम नहीं किया जाएगा, बल्कि उन चाहिए ये कि उनको जो है वो आप खैर ख्वाही के साथ अच्छे मशवरे देते रहें, ठीक है, और उनको समझाते रहें कि फलाना शख्स जो है वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, वो आपका खैर ख्वाह नहीं है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट ना करें। तो इस तरीके से उनको समझा बुझा करके काम चल सकता है। ठीक है, तो माल से महरूम करना जो है वो वाहिद ऑप्शन नहीं है, बल्कि दूसरे भी ऑप्शन इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी खैर ख्वाही के लिए। डाउन सिंड्रोम बालिग की शादी हो सकती है क्या? अगर हो सकती है, ये तो फतवे वाला भी सवाल है, और दूसरा ये कि अगर कोई डाउन सिंड्रोम बच्ची ही मिल जाए तो फिर ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, देखा है हमने इस तरह करके। वसीयत में विरासत का कोई लिंक नहीं, वसीयत में विरासत का कोई लिंक नहीं, मतलब आपका शायद कहने का ये है कि वारिस के लिए वसीयत जायज नहीं है, शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं है या नहीं, या मतलब कौन से, आप हाइपर लिंक की बात कर रहे हैं या कौन से वाले लिंक की बात कर रहे हैं? भाई बंदा जब मरता है ना तो उसका जितना तरका होता है उस तरके से पहले उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाएगा। ठीक है, कोई और कर दे तो हो गया, लेकिन अगर किसी और ने इंतजाम नहीं किया उसके कफन दफन का, तो उसके अपने तरके में से, यानी जो कुछ छोड़ करके वो मरा है, ठीक है, तो उसमें से उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाएगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो कर्जे आते हैं, ठीक है ना, उन कर्जों को अदा किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितना बच गया उसके 3 हिस्से किए जाएंगे, उन 3 हिस्सों में से 1/3, यानी एक हिस्सा उन 3 में से, ठीक है, उस हिस्से को अलग किया जाएगा। और अगर उसने कोई वसीयत करी हुई है, वसीयत यानी ख्वाहिशात छोड़ करके गया है कि मैं चाहता हूं कि अपने फलाने दोस्त को इतने पैसे दे दूं, और ईदी ट्रस्ट के अंदर इतने दे दूं और आलमगीर ट्रस्ट के अंदर इतने दे दूं, तो ये जो वो कह के गया ना, ये जो इसकी ख्वाहिशात हैं कि मेरे मरने के बाद ऐसे ऐसे दे देना, इसको वसीयत कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये वसीयत उसके पूरे माल में से नहीं की जाएगी, बल्कि 1/3 में से की जाएगी सिर्फ, ठीक है। और 1/3 अगर खत्म हो गया और उसकी ख्वाहिशात खत्म नहीं हुई कि इतना उधर दे देना इतना उधर दे देना, तो बस खत्म। 1/3 अगर एग्जॉस्ट हो गया और उसकी वसीयत एग्जॉस्ट नहीं हुई तो वसीयत को फिर छोड़ दिया जाएगा, बस हो गई, बस जितना था उतना दे दिया गया, सही है, बाकी है ही नहीं, अब तो बचा ही नहीं है कुछ, तो फिर कैसे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 1/3, इसके अंदर वसीयत जारी होती है, ठीक है, इसी को कहते हैं वसीयत जारी होना। बाकी कितना बच गया, 2/3। अब 2/3 के अंदर क्या होगा, 2/3 जो है इसके अंदर विरासत जारी होगी, विरासत, ठीक है। क्या मतलब, अगर उसके बेटे हैं तो उसके माल को, यानी उसके जैसे दो बेटे हैं तो उसके माल के दो हिस्से किए जाएंगे, यानी वो जो 2/3 बच गया है उस 2/3 के दो इक्वल हिस्से बनाए जाएंगे, एक एक बेटे को दे दिया जाएगा, दूसरा दूसरे बेटे को दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर उसके दो बेटे और एक बेटी है तो उसके माल के 5 हिस्से किए जाएंगे, यानी 2/3 जो बच गया है उसके 5 हिस्से किए जाएंगे। उन 5 हिस्सों में से दो हिस्से एक बेटे के, दो हिस्से दूसरे बेटे के, और एक हिस्सा जो बच गया वो बेटी को दे दिया जाएगा, इसको कहते हैं विरासत। और ये विरासत, ये अल्लाह ताला ने डिफाइन करी हुई है कि किसको कितना देना है, और ये 2/3 के अंदर चलेगी, ठीक है। अब आप जो पूछना ना लिंक वसीयत और विरासत में, इससे मतलब ये क्या पूछ रहे हैं, यानी वो ये नहीं कर सकता कि कहे कि उसको इतना और उसको इतना दे देना, नहीं। उसको उससे मुराद आपकी उसकी जो वारिस है, शरी वारिस जो होते हैं, बेटा बेटी बीवी, राइट, ये सब शरी वारिस कहलाते हैं ना, वो नहीं कह सकता कि इस बेटे को इतना दे देना उस बेटे को इतना दे देना, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि बेटे को कितना मिलना है और बेटी को कितना मिलना है और बीवी को कितना मिलना है, ये अल्लाह ताला ने कहा हुआ है, ये नहीं कह सकता, ठीक है, इसके पास हक नहीं है। हत्ता के अगर ये कहे कि जो 2/3 माल मेरा वारिसों में तकसीम होगा ना, तो उस 2/3 माल को तो तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वारिसों में तकसीम कर देना, लेकिन जो 1/3 माल है ना मेरा, जिसमें कि वसीयत जारी होती है, मैं चाहता हूं कि वो 1/3 जो है मेरे बड़े बेटे को दे देना, क्योंकि उसने मेरी बड़ी खिदमत करी है और खिदमत कर कर के उसने मेरा दिल जीत लिया है, इस वजह से जो मेरा 1/3 माल था ना वसीयत वाला, वो मेरे बड़े बेटे को दे देना, और 2/3 माल जो है वो शरीयत के हुक्म के मुताबिक तकसीम कर देना। नहीं, ये नहीं होगा, क्यों, इसलिए कि नबी अलैहि सलाम का कौल है बिल्कुल ऑथेंटिक सही कि वारिस के हक में वसीयत नहीं की जा सकती, क्योंकि बेटा जो है, बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा, जो भी बेटा है वो ऑलरेडी वारिस है, आप उस वारिस को वसीयत नहीं दे सकते, ठीक है, बात क्लियर हो रही। बीवी का हक जो है वो उस वक्त बनता है जबकि बेटे ना हो, ठीक है, अगर बेटे होते हैं। अच्छा, ये तो पूरे माशाल्लाह जो सिराजी पढ़ने वाले लोग हैं, सिराजी जो है वो मीरास की किताब है जो कि उलमा को पढ़ाई जाती है, तो सिराज ने भी किसी जमाने में पढ़ी थी, अब इतना ज्यादा याद नहीं है। तो बहरहाल बीवी का हिस्सा शायद 100 बनता है ना, बेटे ना हो तब बीवी को मिलता है 1/8 उसका, खैर उसकी तफसीलात मुझे याद नहीं है, तो उस वजह से जो भी है मिलता है वैसे बीवी को। ओके, अच्छा, कहाँ पर थे हम, तो हाँ, अगर कोई बिल्कुल पागल और मजनून हो, जैसे कि अभी डाउन सिंड्रोम और मेंटली रिटार्डेड और ये सारी बातें हुई है ना, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो मजनून ही हो, सो उसका हुक्म अलैहदा है कि वो हमेशा नाबालिग बच्चों के हुक्म में रहता है और इसके अम्वाल कभी उसके हवाले न किए जाए। तो जी, मतलब میں بھی تو ماشاءاللہ ادھر ہی کور ہو گیا تھا. جب تک اس کا جنون زائل نہ ہو جائے اگرچہ ساری عمر اس جنون میں گزر جائے. تو بھائی ولی کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے نا کہ جب تک یہ بچہ زندہ ہے اس وقت تک اس کے اوپر خرچہ ہوتا رہے گا, اور پھر جب یہ بچہ مر جائے گا تو پھر اس مال کا جو ہے وہ کوئی اور انتظام ہوگا شریعت کے حساب سے. یعنی اپنی زندگی میں جو دینا چاہے دے سکتا ہے. جی بالکل, جو کرنا ہے اپنی زندگی میں کر کے بندہ گزر جائے زیادہ بہتر ہے. مطلب یہی کر سکتے ہیں, بننے کے بعد پھر اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے. یتیموں کے مال بے جا خرچ کرنے کی ممانعت, جیسے کہ معلوم ہو چکا ہے اس آیت میں. اچھا, اس میں بھی خواتین کی طرف سے بھی ایک سوال آیا تھا, وہاں پہ بھی بتائیں اسی ٹاپک پہ بات نکل آئی تھی, تو کہ اپنے کسی بچے کو زیادہ دے سکتے ہیں, کسی نے یہ سوال کیا تھا. تو اس پر نا میں نے یعنی خیر مشائخ سے بھی یہ سیکھا ہے اور اپنا ذاتی بھی جو ہے وہ آبزرویشن کے حساب سے کہ بھئی کسی بچے کو اگر زیادہ دینا ہے نا دوسروں کے مقابلے میں, ٹھیک ہے, تو اس کو ویسے تو ڈسکریج کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ بچوں میں پھر اس کی وجہ سے نا نفرت پیدا ہوتی ہے آپس میں بھی, حسد پیدا ہوتا ہے, اور ماں باپ کے بھی خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ بھی اس کو کیوں نوازا, مجھے کیوں نہیں نوازا, ٹھیک ہے. تو اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے حدیث کے اندر, سارے بچوں کو ایکول ٹریٹ کرو, ایکول دو. لیکن اگر کسی کو دینا بھی ہے نا تو اس کے اندر پھر مناسب کیا بات ہوگی کہ دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ وہ اس نے آپ کا دل خوش کیا ہے, یا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے حالات ذرا تنگ ہیں, مشکل میں ہے وہ بیچاری یا بیچارہ, ٹھیک ہے, تو آپ اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, تو اب آپ کو اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کی آپ ہیلپ کریں اور دوسرے بچوں کو نہ بتائیں. اسی وجہ سے جو اپنے اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا, ان اکاؤنٹس کو ہر ایک کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے وہ اتنی بڑی عقل مندی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ سب کو جو ہے وہ محبت میں آ کر کے جو ہے سارے کے سارے اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات بتائیں گے, ٹھیک ہے, جتنی ضرورت ہو نا اتنا بتانا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ایک اصول کی بات یاد رکھیں, اب آپ کی بیویاں سن رہی ہیں تو آپ کا مسئلہ ہو, یعنی پہلے بھی کہا ہے کہ بھائی اب یہ خالی عالمات عالم مسالے کی کلاس ہے تو بیویوں کو مت بٹھائے گئے اس کے اندر. اینی وے, تو بیوی صاحبہ کو بھی ہر چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی نا, جتنا ضرورت ہے یا وہ بہت آپ کے پیچھے پڑی ہوئے کہ بتاؤ بتاؤ بتاؤ, ٹھیک ہے, تو پھر بتا دیں. لیکن اپنی طرف سے جو ہے وہ ساری انفارمیشن شیئر کرنا, آفر کرنا, ٹھیک ہے بھائی, سوچ سمجھ کر کے بات کیا کریں نا, کہ کیا بات کر رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, کیا وہ بندہ جو ہے وہ اس کو ہینڈل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, کیا بندہ اس بات کو بعد میں جا کر کے میرے خلاف تو نہیں استعمال کرے گا, ٹھیک ہے, تو اب جب خلاف استعمال کرے گا تو بھی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ چیز مشائق کے ساتھ نہ استعمال کیا کرنے والے کون کس, مشائق کیا علاج کے ہوتی ہے نا, تو وہ آپ کے خلاف استعمال ہو تو پھر وہ آپ کی قسمت ہے, لیکن وہ بھی شاید آپ کے فائدے میں ہی ہو جائے. لیکن بہرحال میں مشاہد کی بات نہیں کر رہا, اپنے خاندان کے اندر بیوی بچے سب کے ساتھ ہر چیز شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے اگر کسی کو دینا ہے تو آپ خاموشی سے کسی کو دے دیں, دوسروں کو پتا بھی نہ چلنے دیں, ٹھیک ہے, ورنہ خاموشی نفرتیں پیدا ہوں گی تو کس کو فائدہ ہوگا اس سے. تو یتیموں کے مال بے جا خرچ کرنے کی ممانعت, جیسا کہ معلوم ہو چکا کہ اس آیت میں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ یتیموں کے مال ان کو اس وقت تک حوالے نہ کرو جب تک ان میں کسی قدر ہوشیاری اور تجربہ نہ آ جائے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ مزید کچھ عرصہ انتظار کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, ایک دم 5-15 سال یا 12 سال میں آپ نے اٹھا کر کے یتیموں کو دے دیا تو ان کا نقصان ہو جائے گا نا, تو اس سے بچنا ہے. اس حالت میں یہ امکان تھا کہ اولیاء یتیم کی طرف سے کوئی ایسی زیادتی ہو جس سے یتیم کا نقصان ہو, اس سے آگے اس آیت میں ارشاد فرما دیا, وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا, یعنی ان اموال کو ضرورت سے زیادہ زائد اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کو دینا پڑے گا, جلدی جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو, ٹھیک ہے بھائی. ابھی تو احکامات آ رہے تھے نا, تو ان احکامات سے پہلے تو لوگوں کو ڈائریکشنز نہیں ملی ہوئی تھی, تو ہو جاتی ہوں گی اس طرح کی غلطیاں کہ بھائی کچھ سمجھ کر کے جلدی جلدی استعمال کر دیا اور شیطان نے جو ہے وہ ذہن میں ایسی بات ڈالی کہ اچھا ہے اس بچے کا بھی فائدہ ہو رہا ہے, جلدی جلدی خرچ کر دو اور تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا, تمہیں بھی تو ضرورت ہے نا آخر, تو اس طریقے سے مال ختم کر دیا, ٹھیک ہے, پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی اس بہانے جو ہے وہ ایکچولی میں ظلم کا مرتکب ہو رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو پھر بالکل کلیئر کر دیا کہ ایسا نہ کرو. اس میں اولیاء یتیم کو دو چیزوں سے روکا گیا, ایک ان کے مال میں اسراف یعنی ضرورت سے زائد خرچ کرنے سے, دوسرا اس بات سے کہ ان کا مال ضرورت پیش آنے سے پہلے جلد جلد خرچ کرنے لگیں, اس خیال سے کہ ان قریب بھی بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال ان کو دینا پڑے گا, ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا. یتیم کا ولی اس کے مال میں سے ضرورتاً کچھ دے سکتا ہے. آخر آیت میں اس کا ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم بچے کی تربیت اور اس کے مال کی حفاظت میں اپنا وقت اور محنت خرچ کرتا ہے، کیا اس کو یہ حق ہے کہ یتیم کے مال میں سے اپنا حق الخدمت کچھ لے لے؟ چنانچہ فرمایا ومن کان غنی فلیستعفف، یعنی جو شخص حاجت مند نہ ہو، یعنی غنی ہو، غنی کا مطلب ہوتا ہے جس کو دوسروں کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو غنی کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ غنی ہے، ضرورت نہیں ہے کسی کی اللہ کو، تو جو شخص حاجت مند نہ ہو، اپنی ضرورت کا تکفل کسی دوسرے ذریعے سے کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ یتیم کے مال میں سے حق الخدمت نہ لیا کرے، کیونکہ یہ خدمت اس کے ذمے فرض ہے، اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ بھئی یتیم یہ ولایت کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو پھر فرض بن گیا اس کے بعد، یہ تو اس وجہ سے اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا ومن کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، یعنی جو ولی یتیم فقیر محتاج ہو اور دوسرا کوئی ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو، وہ یتیم کے مال میں سے ایک مناسب مقدار کھا سکتا ہے جس سے حاجات ضروریہ پوری ہو جائیں۔ اب یہاں پر تو تقوی کام آ سکتا ہے نا، کہ بندہ اپنی حاجات ضروریہ جو ہے وہ صحیح صحیح ڈیفائن کرے، زیادہ نہ کرے، اور اپنے فقیری کو بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے گیج کر سکے کہ واقعی وہ فقیر ہے کہ بس ایسے ہی بنتا پھر رہا ہے فقیر۔ مال سپورٹ کرتے وقت گواہ بنا، تھوڑا سا ادھر آپ سے ایک دو منٹ اور لے لوں گا۔ آئی تھنک اٹ ڈیپینڈ آن ریلیشن شپ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، جی آئی تھنک، تو پھر تو آپ تھنکنگ کے ہر بندے کو انڈیپینڈنس حاصل ہوتی ہے کہ وہ کیا سوچے۔ مال سپورٹ کرتے وقت گواہ بنانا، ہاں آپ ایک دم ساتھ بیٹھے ہیں ویسے لگتا ہے مجھے، آخر میں ارشاد فرمایا کہ فیضا دفاع تو میرے اشہدو علیہم وکفا باللہ حسیبا، یعنی جب آزمائش کے بعد یتیموں کے اموال ان کے سپرد کرنے لگو تو چند ثقہ اور نیک لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو تاکہ آئندہ کسی نزاع اور جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں ہر چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو گواہ بنا لینے سے یعنی بلا ضرورت جھگڑے سے انسان بچ جاتا ہے۔ اوقاف و دوسری ملکی اور ملی خدمات کا معاوضہ، آیت کے سباق سے یعنی اس کی جو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے اس سے ایک فقہی ضابطہ اور اصول معلوم ہو گیا کہ جو لوگ اوقاف کے نگران ہیں یا مساجد و مدارس کے منتظم ہیں یا مسلم حکومتوں کے اداروں کے ذمہ دار ہیں یا ایسی ہی دوسری ملکی اور ملی خدمات جن کا انجام دینا فرض کفایہ ہے ان پر مامور ہیں، ان حضرات کے لیے بھی اعلیٰ اور افضل یہ ہے، یعنی یہ اب یہاں پر فرض عین کی بات نہیں ہو رہی بلکہ فرض کفایہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک سوسائٹی کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور ایک بندہ بھی اگر پراپرلی اس کو ادا کر دے، یعنی ادا کر دے تو باقی سب کے اوپر سے بھی وہ ثابت ہو جاتا ہے، جیسے رمضان المبارک کا اعتکاف وہ بھی فرض کفایہ ہے، ایک بندہ بھی بیٹھ جائے اگر اعتکاف میں ایک مسجد کے یعنی نیبرہڈ کا تو پورے علاقے کے لوگوں کے اوپر سے وہ اتر جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی قسم کے فرض کی بات ہو رہی ہے کہ ان حضرات کے لیے بھی اعلیٰ اور افضل یہ ہے کہ اگر اپنے پاس اتنا اثاثہ ہو اور وہ اپنے بچوں کے ضروری اخراجات پورے کر سکتے ہوں تو ان اداروں سے اور حکومت کے بیت المال سے کچھ بھی نہ لیں، کیونکہ بیت المال میں تو پیسہ جمع کیا جاتا ہے نا عوام الناس سے، اسی سے پھر وہ بیت المال میں پیسے آتے ہیں، یا جہاد وغیرہ سے جو مال آتا ہے وہ بیت المال کے اندر رکھا جاتا ہے، تو نہ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اپنے پاس گزارے کے لیے مال موجود نہ ہو اور قصد کے اوقات ان کاموں میں مشغول ہو جاتے ہوں تو بقدر ضرورت ان اداروں سے مال لے لینے کا اختیار ہے، ٹھیک ہے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پہلی ایسی شخصیت تھے جو کہ اس طریقے سے نا مسلمانوں کے امور کے اوپر متعین ہوئے تھے، ٹھیک ہے، سارے مسلمانوں نے بیعت کری تھی ان سے اور ان کو خلیفہ وقت بنایا تھا۔ اب جیسے ہم نے اپنے مشائخ سے سنا کہ اگلے دن جو ہے خلیفہ بننے کے بعد اگلے دن جو ہے وہ نکل پڑے اپنے کام پر جانے کے لیے، بھائی ان کی کھڈیاں تھیں مدینہ منورہ کے باہر، وہاں پہ جو ہے وہ کپڑے وغیرہ کا کام ہوتا تھا، تو راستے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، ابو بکر کدھر جاتے ہیں، میں تو جا رہا ہوں اپنے کام کے اوپر، اچھا اگر آپ ادھر چلے گئے تو پھر یہاں مسلمانوں کا کام کون کرے گا، اجتماعی کام کون کرے گا، تو پھر میرا گزارا کیسے چلے گا، میرے بچوں کا گزارا کیسے چلے گا، تو بھائی اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو ادھر سے پھر جو ہے وہ وظیفہ مقرر کیے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اب ظاہر ہے یہ حضرات تو سب سے بڑھ کر کے تھے تقویٰ میں اور जोहद में, तो इस वजह से वजीफा जो लेते थे वो एक तो बहुत कम देते थे, और दूसरा ये भी कि बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त किया करते थे अपने ऊपर भी और अपने घर वालों के ऊपर भी। लेकिन ये सिलसिला वहां से शुरू हो गया। तो बजरूरत इन इदारों से माल ले लेने का इख्तियार है, मगर कदर जरूरत का लफ्ज पेश नजर रहे। बहुत से लोग जाबते के तौर पर कागजी खानापुरी के लिए अपना माहाना कुछ हिस्सा मुकर्र तो कर लेते हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से इससे कहीं ज्यादा बे एहतियाती के साथ अपनी जात पर और बाल बच्चों पर खर्च करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए फिर हराम हो जाता है, क्योंकि एक तय हुआ हुआ है मामला, जो कि यानी जैसे मजलिस शूरा वालों ने उनके लिए एक वजीफा तय कर लिया। ठीक है, तो उनको वो वजीफा तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो कभी इधर से ले लिया, कभी उधर से ले लिया, तो अब ये हराम आ रहा है उनके पास ना। तो ये जो हराम आता है, तो हराम आने की वजह से फिर उनके ऊपर वबाल आएगा। जब उनके ऊपर वबाल आएगा, तो फिर उन्होंने जो यानी जिन इदारों का काम संभाला हुआ है, ठीक है, तो उन इदारों का काम जो है वो ऐसे तरीके से नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इदारे मुतासर होंगे, और फिर उन इदारों के ऊपर जो अवाम डिपेंड करते हैं, अवाम की जरूरियात डिपेंड करती हैं, वो सारी की सारी चीजें मुतासर होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना वो एक यानी चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, और इसके अंदर फिर हर कोई इससे जो है वो नुकसान उठा रहा होता है। तो इस बेएहतियाती का मदावा बजुज खौफ इलाही के तो कुछ नहीं है। इसकी तरफ आयत के अखीर टुकड़े में वकफा बिल्लाह हसीबा फरमाकर जुमला अवामो खवास को तवज्जो दिला दी गई है, जिसे अल्लाह के मुहासिबे का ख्याल हो वही नाजायज माल से बच सकता है, व बिल्लाह तौफीक। ठीक है, तो अब जो है ना ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जिसके अंदर तकवा यानी का दामन ना छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला है, तो इसमें ना ये जो 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 लोग हैं, ये लोग भी फंसे रहते हैं, और अगर इनसे गलती हो गई तो उस गलती का असर फिर पूरे के पूरे मुआशरे के ऊपर भी पड़ रहा होता है, क्योंकि यही तो लोग हैं जो कि मुआशरे का इंतजाम करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इस वजह से ना ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि इसकी बजाय जो है ना इनकी जो है वो दूसरे तरीके से इनकी कफालत की जाए। ठीक है, और इनकी जो है जरूरियात को जो है वो दूसरे तरीके से मीट किया जाए, जिसको के चंदे का निजाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे दारुल उलूम देवबंद का और बड़े बड़े मदारिस का जो निजाम जो है वो चंदे से चल रहा है। ठीक है, तो अब वहां से जो है ना वो फिर लोग अपनी मर्जी से दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फिर कोई ऐसी वो नहीं होती है, आपके ऊपर जो है वो लिमिट्स नहीं होती है। आपको जितना मिल रहा है अल्लाह ताला की तरफ से जो मिल रहा है वो आपकी मिल्कियत बन रहा है, अब उस मिल्कियत को आप जैसे चाहें खर्च करें, उससे जो है वो अपने काम अपनी जरूरत के ऊपर खर्च करें, आप उसको जो है वो किसी और जगह पर खर्च करें। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना वो खैर ही खैर है इस वाले सिस्टम के अंदर। इसी वजह से हमारे मुशायर जो है वो इसी सिस्टम को जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, अगरचे के दूसरे सिस्टम की भी जाहिर इजाजत है, लेकिन दूसरे सिस्टम के अंदर फिर आप बहुत ही थिन रोप के ऊपर चल रहे होते हैं, यानी बाल से ज्यादा बारीक गोया के रस्सी है, उस रस्सी के ऊपर जो है ना वो आप बगैर डंडे के बैलेंस के उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये तो फिर चलना जो है ना वो फिर अबू बकर सिद्दीक और अशरा मुबशरा साहबा के लिए मुमकिन होता है, आज के दौर का कोई बंदा तो इस रस्सी के ऊपर नहीं चल सकता। ठीक है, अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए।